सेवा। এই সব সেবা যখন দেখা যায় কৃষ্ণের, কৃষ্ণ বাঁশি হাতে নিয়ে দ্বারকা যায় না, মোর পাখা নিয়ে যায় না। কেন? ওখানে দরকার কি? আরে এখানে গোপীরা আছে, এদের মান ভঙ্গ করতে আমাকে তাদের পায়েতে দিতে হয়, বাঁশি ওদের চরণে নিয়ে ছাওয়া করে দিতে হয়, মোর পাখা ওখানে দিতে হয়, আর ওদের কথা আমি একটি যদি দিয়ে দিই কি ধমক দিয়ে দেবো, কোথায় তাহাদের মান টান চলে যায়। এখানে কি দরকার? সত্যভামার কোন সময় মান হয়েছে যে গোপীগণ অত আদর করেন আমাদের না? তখন কৃষ্ণ বলছে সত্যভামার এই সত্রাজিতের কন্যাকে একই ভাগ্য আমার রাজভাব ফল দিবে, থর হয়ে কম করে তাহার ওখানে হাত জোড়ে উপস্থিত হয়ে গেল। গোপীরা এরকম করবে কি? কৃষ্ণকে ওখান থেকে একেবারে তাড়া দিয়ে দিবে, বলবে যে ললিতাকে বার করো, তো ললিতা ধর তাহাকে বার করে দিয়ে আসবে। এই হচ্ছে প্রেম সেবা। এটা ব্রজ ছড়া কোথাও নেই, ব্রজের সেবার মধ্যে সুবল শ্রীতাম ইত্যাদি সেবা, ব্রজের সেবা খুব বেশি বড়। কিন্তু তাহার যত তুলনামূলক বিচার করা যায়, তখন রাধাকুণ্ডেতে তার সখারা কেউ যাবে? যেতে পারে, যেখানে রাস হচ্ছে ওখানে সখারও যাবে কি? যশোদামা ওখানে যাবেন? ওখানে সেবা কিছু করবেন? ওখানে খাবার নিয়ে রাসের সময় যশোদামা নন্দ বাবা যাবেন, যে বাবা তুমি খাও, আগে তাকে শোয়াবেন, কি করবেন? ওখানে তাহাদের প্রবেশ নেই। এই জন্য দাস্য সখ্য বাৎসল্য সেবার অগোচর হচ্ছে কি? এই গোপীগণের সেবা। এই হচ্ছে সনাতন ধর্মের নিত্যের মধ্যে আবার অরুণ নির্যাস হচ্ছে এটি সেবা। এই হচ্ছে সনাতন ধর্ম। চৈতন্য মহাপ্রভু এইসবগুলি দেবার জন্য এসেছেন। আমি একটু আউটলাইন দু চারটি লাইন বললাম, এরপরে আপনারা এর বিশদ ব্যাখ্যা শ্রীপাদ বৈষ্ণব মহারাজের নিকটেতে আপনারা কিছু শুনুন। আমি বেশি দেরি বসতে পারিনি, আমার একটা অসুস্থ শরীর, এই জন্য আমাকে আর ক্ষমা করবেন, আমি বসতে পারবো না। এরপরে বৈষ্ণব মহারাজ আপনাদের সম্বন্ধে সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে কিছু বলুন। গৌর প্রেমানন্দ।
नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। एक बार कहने से संभावना रहती है कि कर भी देंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक लाइन है ये, हम कहेंगे जो कुछ हो जाए मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा और नहीं करूंगा। तो वैसे उसमें बतलाया गया है हरे नाम तीन बार करते हैं, और गति नहीं है, गति नहीं है और गति नहीं, हरि नाम के बिना गति नहीं है, गति नहीं है, और जोर देने के लिए कहा है विश्वास दिलाने के लिए नहीं है, इसके बिना और कुछ नहीं, इसलिए दृढ़ता के लिए इस चीज को कहा गया। और यही नहीं, उसमें एव शब्द लगाया गया है, एव मैंने ही, निश्चित नई गति है, नई गति है बिना हरि नाम के। यदि कोई आदमी ये सोचता है बिना भगवत भक्ति के, बिना हरि नाम के हम जीवन में सुखी रह सकते हैं, कदापि नहीं होगा, कदापि नहीं होगा और कदापि, कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं नहीं हो, अनुभव के साथ। कभी भी दृढ़ता दिखलाने के लिए ऐसा कहा जाए, कोई आदमी घर में रूठ गया, कोई खिलाने की चेष्टा, नहीं खाऊंगा और नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। कभी है कभी, इसलिए दृढ़ता के लिए शास्त्र में बताया गया। अपने लिए कहा है माम एव, तीन जगह बतलाया है, हमारी शरणागति, हमारी भक्ति ही, हमारी भक्ति ही जगत के लिए कल्याणकारी है और कुछ नहीं, इसलिए माम एव, तीन बार ऐसी प्रतिज्ञा की है गीता। किंतु विश्वास हम लोगों को नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्या हो गया? नवदीप धाम में जो भक्ति होती है वो साधन है, वृंदावन की जो भक्ति है वो साध्य है, है तो वो भी साध्य। जैसे कोई वृंदावन में मथुरा में नवदीप में साधन करता है, क्या साधन करता है? हरिनाम करता है, महाप्रभु की साधन करता है, भजन करता है। किस लिए? ब्रज में राधा कृष्ण की हम सेवा कर सकते। ये जो राधा कृष्ण की सेवा है यही साध्य है। तो वहां पर धाम की कृपा और कृष्ण ही महाप्रभु के रूप में गए हैं, साधन के लिए सब सुगमता वहां कर देते हैं और थोड़े से साधन में हो सकता है। इसलिए वहां पर महाप्रभु जी की यदि दास रूप में सेवा की जाएगी, भजन की जाएगा, तो उन्हीं को हम राधा कृष्ण के रूप में देख सकें। वहां पर साधन करेंगे और वृंदावन में राधा कृष्ण की सेवा में हमारी गति की जाएगी। पहले सेवा नहीं होगी, पहले साधन करना होगा। जैसा हम साधन बतला रहे हैं, प्रेम का विकास करना, हमारे अंदर में प्रेम है इसका विकास करना है। कैसे होगा? उनको सुनेंगे, सुन करके वैसा ही अपने हृदय को उठा लेंगे। हृदय से काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष कलह संसारिक वस्तुओं की लालसा, इनको पहले निकालना है। किंतु निकालने में आप लोग या हम लोग समर्थ नहीं है। वो होगा कि कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा ये सब चीजें? यदि हम भगवान का भक्ति जितना करते जाएंगे, भक्ति बढ़ती जाएगी, ये सब चीजें धीरे धीरे हट जाएंगे। किंतु कैसे? एक बड़ा भारी डकैत, लाखों खून करने वाला ये वाल्मीकि जी अपने पूर्व जीवन में रत्नाकर दस्यु और नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी के ऊपर उनका विश्वास हो गया। जब बैठिया और ये लोहे का जो मुद्गर है, गदा है, इसको फेंक दो, धनुष बाण फेंक दो, किसी की जीव हिंसा मत करना, किसी को आप सताना मत, एक चीटी तक को भी नहीं मारना, उसको भी कष्ट ना पहुंचे, और यहीं पर बैठ करके भजन कर, राम राम कर। राम राम तो कर नहीं सका, मरा मरा करने लगा। उनके आदेश नहीं होने से वहां से उठा नहीं, खाना पीना तो छूट गया, यहाँ तक कि टट्टी पेशाब वो भी बंद हो गया, और उठा ही नहीं। उसके ऊपर में दीमक लग गए, हजारों वर्ष लग गए। हजारों वर्षों के बाद में उसकी सिद्धि, उसके हाड़ भी अब गलने लग गए थे, उस पर दीमक खा रहे थे और वो उठा नहीं। कितना कठोर साधन। और तब भगवान भक्ति उसके हृदय में आई, भविष्य भूत वर्तमान सब कुछ जान गया। रामलीला का वर्णन रामलीला होने से पहले ही कर दिया सब, और जगत के वंदनीय बन गए। अब उनकी तुलना में हम लोगों का साधन देखो तो कैसा साधन, खा भी रहे पी रहे। महाप्रभु जी ने कंसेशन किया, खाओ पियो सब करो, घर का काम करो, किंतु सवेरे शाम भगवान का स्मरण तो कर लिया करो और हरे नाम करो। इसमें न पैसे की जरूरत है, न साधन की जरूरत है, न ऐसे दिन रात बैठ करके बैठने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है। और सदगुरु का पादाश्रय करके उनके नियमों के अनुसार में तुम हरिनाम करो और जैसा कहते हैं वैसे अपने को लाओ। धीरे धीरे ईर्ष्या द्वेष कलह सब कुछ निकल जाएगा और धीरे 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 भगवान की भक्ति बढ़ती जाएगी, अपने आप अनुभूति हो। हाँ तो गया है ना? नहीं भाई, संसार में सभी लोग सुखी होना चाहते हैं। कोई हाथ उठाओ तो जैसे मैं बहुत दुखी रहना चाहता हूँ और सब समय हमारे ऊपर में संकट और दुख आए, कोई चाहेगा? कोई भी ना चाहता है। संसार में एक जैसा भी देखते हैं
स्पर्श गरिमा कोई गुण योग्यता की नहीं है या कुछ है तो सुखी होने के लिए वो क्या करता है, क्या करता है? उसको दूसरे का सहारा लेना आवश्यक है। कैसे सहारा? सहारा लेना अनिवार्य है। जन्म हुआ, बच्चा अपने आप खाएगा, कोई खिलाएगा तो बिना सहायता के वो नहीं खा सकता। पढ़ना चाहता है या घर के लोग पढ़ाना चाहते, अपने आप पढ़ लेगा, उसको सहारा चाहिए कि नहीं चाहिए? सर सहज रुपये बदला है, सहारा चाहिए। मान ले कि पढ़ लिख लिया, सब कुछ हो गया, अब उसको पैसा कमाना है, किसी की सहायता की जरूरत है, सहारे की जरूरत है कि अपने आप हो जाएगा? अपने बाप का, परिवार का, या गवर्नमेंट का सहारा लेना, या किसी धनी व्यक्ति का सहारा लेना, किसी बड़ी कंपनी का सहारा लेना, या अपने पास पड़ोस के लोगों का सहारा, बिना सहारा का हो जाएगा? बिना सहारे के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एक छोटी सी कहानी है, कोई एक गरीब आदमी बादशाह अकबर के पास में गया। अकबर ने उसे बुलाया, तो ये किस लिए आया हमारे पास में? तो हम आपके पास में आए हैं, हमारे पास में पैसे नहीं है, आप शहंशाह हैं और मैं कुछ आपसे चाहता हूं। तो उसने आंख बंद किया और अल्लाह का स्मरण किया और उसे मांगा कुछ। तो इसने फकीर या उस व्यक्ति ने कहा कि आप आंख बंद करके क्या कर रहे थे? तो मैं भगवान से या खुदा से, अल्लाह से मैं दुआ मांग रहा था जो आपको मैं दे सकूं। आप उनसे दुआ मांग रहे थे तो मैं क्यों नहीं उनसे ही दुआ मांगू? आप जैसे निर्धन है, मैं भी ऐसा निर्धनी हूं, तो आपसे दुआ मांगने के लिए हम नहीं आए, मैं भी उन्हीं से दुआ मांग रहा हूं। तो क्यों नहीं इस विषय के लिए भगवान का ही सहारा पकड़ा जाए? तो ये भजन करना माने भगवान का सहारा लेना है। यदि सुखी होना चाहते हैं तो भगवान का जरूर सहारा लेना पड़ेगा, इसके अतिरिक्त तो कोई उपाय नहीं। यदि हम सहारा लेना चाहते हैं तो हम भगवान को सुखी क्यों करना चाहते हैं? भगवान के लिए इतना कष्ट क्यों करते हैं? किस लिए? यदि हम सुखी रहना चाहते हैं तो जैसे हम किसी कंपनी में नौकरी कर उस कंपनी को सुखी बनाना चाहते हैं पहले, तब तो वो आपको कुछ देगा। यदि किसी धनी आदमी के यहाँ आप कोई काम करेंगे, उसको खुश करेंगे, तो वो खुश होकर के तब आप तो कुछ देगा। तो ऐसे ही आप यदि सुखी होना चाहते हो तो सबसे पहले प्रभु को सुखी कीजिए, वो प्रसन्न होने के बाद में आपको सहज ही रूप में ले आओ, बेटी आ जाओ। विनोद बिहारी जी उधर में छिप करके चलती, उनको कहिए आने के लिए, और वो माता जी को भी इधर में बुलाओ। सारे विश्व को घूमकर मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, बाली, बहुत देशों में घूमकर भगवत भक्ति का प्रचार कर श्रीधाम नवद्वीप में गए। विशाल रूप में हम लोगों का अभ्यास पूजा हुआ,
गुरु महाराज जी के साथ वार्षिकी अनुष्ठान हुआ, उसमें देश विदेश से हजारों लोग उसमें आए। अब सुंदर रूप से अनुष्ठान हुआ। इसके बाद में भी नवदीप परिक्रमा अभी शब्द समाप्त हुई, जिसे 15,000 आदमियों ने भाग लिया। छोटी सी जगह, जैसे आप लोग छोटे से जगह में यहाँ पर बैठे हुए, छोटी सी जगह कैसे 15,000 आदमी उसमें आ जाए, बड़ा आश्चर्य, बड़ी आश्चर्य की बात। और किसी को कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ होने पर उसको सुख मान नहीं, बड़े आश्चर्य की बात। हम लोग 15,000 आदमी को एक साथ में भोजन नहीं दे सकते, चावल दाल आलू काशी फल इत्यादि सब उसी में सब्जी दे दी और एक खीर बनाया नसिंग पल्ली में। 15,000 आदमी को खीर देना एक साथ में और खिलाना सहज बात नहीं। 15,000 तो हमारे आदमी और वहां के कितने आदमी जुट गए, अद्भुत। और इतना सुंदर परमान वहां का खीर जो याद रहेगा। ये महाप्रभु जी की कृपा है, महाप्रभु जी इसीलिए आए, उसी की कड़ी चल रही है। साधारण आदमियों के लिए ये बातें नहीं, साधारण कुछ उसमें शक्ति चाहिए जिसके आगे आदमी सब पालन करने के लिए। क्यों इसका कारण है, सभी लोग वो सुखी होना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु इसीलिए इस जगत में पधारे थे। सबके अंदर में एक कॉमन चीज है, सभी सभी में कुछ कुछ प्रेम है, स्नेह है, भले ही वो कुछ विकृत रूप में प्रकाशित हो रहा है, वो आसक्ति के रूप में या स्वार्थ के रूप में, किंतु है वो प्रेम। जहां कहीं वो थोड़ा सा पाता है, जहां थोड़ा सा वो प्रेम प्रीति पाता है, तो वो पशु हो पक्षी हो यहाँ तक कि फूल पौधे इत्यादि भी आकर्षित हो जाते हैं। इसी को शुद्ध करके भगवान के चरणों में लगाना है, किंतु यह कौशल सबके पास में नहीं। जो उसके प्रेम को लेकर के शुद्ध करके भगवान के चरणों में लगा दिया जाए और उसे सुखी बना दिया जाए, गुरु पदाश्रय करने पर भी और कुछ हरिनाम इत्यादि और भक्ति का कुछ अनुशीलन करने पर भी, पालन करने पर भी बहुत सी बाधाएं हैं। त्यागियों के लिए साधन भजन में एक मर्यादा है और गृहस्थों के लिए भी एक मर्यादा है। भाव अच्छी तरह से सुनिए और इसको पालन करने की चेष्टा कीजिए। क्या हो रहा है? गृहस्थ को भी अपने मर्यादा को पालन करना पड़ेगा, नहीं तो हरि भजन ये ठीक नहीं सकेगा, साधन ठीक से नहीं हो सकेगा। और त्यागियों के लिए भी अपनी मर्यादाएं, जैसे गृहस्थ में हम रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, और परिवार में बन अनबन हो गई और चित्त अशांत रहता है, क्या भजन करेगा? यदि पत्नी का पति से प्रेम प्रीति नहीं है और पति का नहीं उसे है, लड़कों से प्रेम नहीं और लोगों से सहानुभूति परस्पर नहीं है, तो फिर क्या होगा, कैसे भजन करेंगे? तो दिन रात कलह में वो भजन चौपट हो जाएगा। अब त्यागी लोग जहां पर हैं उनकी भी अपनी मर्यादाएं हैं,
वहां पर रह करके अपना सब कुछ त्याग करके अब फिर वहां पर स्वार्थ जब आया, परस्पर अपना स्वार्थ, वहां पर भी पैसे के प्रति लोभ, अर्थ के प्रति लालसा, हिंसा प्रति हिंसा, प्रतिष्ठा की लालसा, ये सब यदि आई तो टकराव होने से वहां पर भी भजन चौपट हो जाएगा। आजकल संसार में ऐसे ही चल रहा है, त्यागी आश्रमों में भी ऐसा ही, गृहस्थ आश्रम में भी ऐसे ही चल रहा है। हम लोगों को बड़ी सावधानी से गृहस्थ रहते हुए भी पारिवारिक क्लेश से कलह से जरा ऊपर उठना होगा, और त्यागी बनने पर भी वैसा आदर्श, त्यागी होकर के एक छोटा सा महाप्रभु का परिकर छोटा हरिदास पुरी में एक भक्त के घर में, महिला की उम्र थी 80-85 वर्ष की, उसके घर के और भी परिवार में लोग थे, स्त्रियां भी थी, लड़कियां लड़के, और एक त्यागी व्यक्ति छोटा हरिदास महाप्रभु का प्यारा बहुत मीठा कीर्तन करता था, महाप्रभु उसके कीर्तन को बहुत पसंद करते थे और कीर्तन सुनाता था, और भिक्षा मांगने के लिए गया और महाप्रभु जी ने क्या कहा, अब हम हमारे यहाँ कभी नहीं आए, जीवन में उसके साथ में हमारा कोई संपर्क नहीं है, और आज से वो अपना मुख हमको न दिखलाए। सन्यासी त्यागी होकर के क्यों गया, ऊपर से देखने से मालूम पड़ता है कि उसका कोई दोष नहीं है, किंतु महाप्रभु चाहते हैं यदि त्यागी है तो उसका जीवन साफ रहे, कहीं भी आसक्ति संसार के किसी भी वस्तु में, न रुपए पैसे में, न किसी स्वार्थ में, न किसी परिवार के किसी व्यक्ति के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने ग्राम के प्रति, अपना कोई नहीं, अपना बस कृष्ण है, अपना ब्रज है, एकांतिक रूप में वहां पर चले। यदि सब से छोड़ा है तो सब छोड़ करके सचमुच में आओ, दिखावने के लिए नहीं, और सदा के लिए छोड़ दिया, उसने खाना पीना छोड़ दिया, रोने लग गया, सब दामोदर जी के यहां गया, नित्यानंद प्रभु जी के यहां गया, राय रामानंद जो महाप्रभु के बड़े प्रिय हैं उनके पास में गया, उन लोगों को बड़ी दया, महाप्रभु से निवेदन किया, जी प्रभु जैसा है बच्चा है, गया था वहां से आपके लिए चावल मांग करके उनके घर से लाया, आप उसे क्षमा करो, अब नहीं करेगा, कहे नहीं मैं यहां पूरी में नहीं रहूंगा, मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा, बस उन्होंने उठाया अपना डोर और कॉपी, उनके पास तो और कुछ नहीं, गोविंद तुम हमारा डोर कॉपी लो, अब चले यहां नहीं रहना है, ये हमारे भी धर्म को भी गड़बड़ करेगा। कृष्ण भजन में यहां करने के लिए आए और आसक्ति दूसरी जगह लगाएंगे, मैं इसको नहीं सह सकता, घर में रह करके करें। उन्होंने लोगों ने कहा जी हम आपसे क्षमा मांगते हैं, आप पूरी से मत छोड़िए, जो आपने किया है ठीक है, हम लोग मान लेते हैं। जब वो सफल लड़का नहीं हुआ तो वो चला आया प्रयाग में, और आकर के वहां पर महाप्रभु का नाम स्मरण करता हुआ भगवान का नाम स्मरण त्रिवेणी में प्रवेश कर गया, प्राण छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद में पुरी में महाप्रभु जब स्नान करने के लिए जाते तो हवा की तरंगों में उसी का गान बह कर गया, प्रवाहित होता गया। किसने कहा जी ये तो छोटे हरिदास का ये स्वर आ रहा है, क्या बात हुई क्या? इतने में प्रयाग से कोई महाप्रभु का भक्त आया और बोला महाप्रभु जी आपने कृपा नहीं की, उसे क्षमा नहीं की, वो जाकर के महाप्रभु त्रिवेणी में जाकर के अपने प्राण को विसर्जित किया। महाप्रभु जी ठीक हुआ, बहुत अच्छा हुआ, किंतु वो उसकी आत्मा वहां आकर और वहां से ही महाप्रभु की कीर्तन सुना रही है, महाप्रभु जी ने उसके ऊपर में कृपा की, दोष उसका कुछ नहीं था, अपने परिकरों के द्वारा ही दूसरों को भगवान शिक्षा देते हैं। एक 84 वर्ष के महिला को भी महाप्रभु जी की परम भक्त,
उसके यहाँ से कुछ चावल मांग करके लाया, किस लिए? महाप्रभु जी को भोजन कराने के लिए। दोष क्या था? वो तो सर्वज्ञ है, हो सकता है उसके घर में कोई लड़की हो, उसके ऊपर में नजर पड़ी हो। त्यागी हो आप, तुम अपनी बहन को, अपनी माँ को छोड़ करके आया है, अपनी पत्नी को छोड़ करके आया है, अपनी प्रतिष्ठा को छोड़ करके आया, रुपए पैसे कार बार सबको छोड़ करके आया, फिर उसी यही यदि कर रहा है, महाप्रभु नहीं क्षमा करेंगे। ये आदर्श होना चाहिए, सबको छोड़ एकांतिक रूप में भगवान का भजन करें, दूसरों को भजन करें। समर्थमान यदि ऐसा गुरु है, महाप्रभु जैसा, महाप्रभु चाहते थे एक मिनट में उसको बदल सकते थे, किंतु नहीं, उसके द्वारा उसको शिक्षा देनी थी सारे समाज को, ये सब शिक्षाओं हमको लेनी चाहिए गृहस्थ लोगों के लिए। वैसा ही आदर्श घर में स्त्री ने, पुत्र ने, पत्नी ने, परिवार के लोगों ने, सभी लोगों ने हरिनाम। अब कला किस चीज का, किस चीज का कला? मिल करके भजन करो। अब वहां पर अकाल अकाल तब तक इसमें मालूम पड़ता है जो भजन करने की स्प्रिया का कुछ अभाव है। इसे सभी मिलकर के, सभी के साथ में सहानुभूति के साथ में सभी को सहायता करने की स्प्रिया होनी चाहिए। रुपया पैसा कमाना ही जीवन का आदर्श नहीं है। दूसरी बात, गंदे गंदे लोगों की को मन रखने का ये भजन नहीं है। महाप्रभु जी कहते हैं यदि परिवार में कोई व्यक्ति है भजन नहीं करता है, अपना भाई है, बेटा है, दूसरे है, उसके कैसे साथ में व्यवहार करेगा? रूप गोस्वामी इसके लिए उपदेशामृत में कहते हैं, देखो उसके साथ में विरोध मत करो, उसके साथ में पारमार्थिक आदान प्रदान मत करो, उसे मत कहो जो तू भजन कर, जब जबरदस्ती उसको मत चढ़ाओ, ऐसा करो, ऊपर से मत पढ़ो उसके ऊपर, पारमार्थिक आदान प्रदान मत करो, और उसके साथ में साधारण रूप में जैसा व्यवहार है वैसा करो, आसक्त मत हो, उसका कल्याण करूंगा ही, ऐसा मत करो जोर जबरदस्ती। हाँ, भीतर से प्रेम के साथ में, स्नेह के साथ में उसको ऐसा करो, इसलिए उसके साथ में परमार्थिक व्यवहार मत करो, किंतु और जो विचार है उसको ऊपर से मुलायम से मधुर रूप में बोल सकते हैं। यदि इस पर भी नहीं होता है तत्जिए कोट बैरीशम जद्य परम शमेश, जिनके प्रिय नाराम बैरी तजिए कोटि वैरीशम जद्यप परम शनेहि तजौ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरु बलि तजौ कंत ब्रज बनित भय जग मंथन कारी। इस अवस्था में उस गंदे परिवेश को छोड़कर सब विरोधों का समाधान करके, अच्छा भैया हमको इस जीवन में हमने उत्थान लिया है कि हमको भगवान का भजन करना है, अतः जब देखते हैं कि सभी लोग विरोधी हैं, तो मैं भजन करने के लिए जहां भी जैसे भी होगा भगवान तो हमारी रक्षा करेंगे ही, उस अवस्था। अथवा और एक परिस्थिति है, भगवान का इतना प्रेम हो जाए जो अपने से संसार संसार भूल जाए, एकदम सारा संसार भूल जाए, उस समय बस कृष्ण कृष्ण की हा कृष्ण हाँ कृष्ण मेरे प्राण निकल रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति हो जाए तो भी घर को छोड़, वो छोड़ देगा, छोटे अपने आप छोड़ देगा घर। इसलिए इस अधिकार में यदि कोई छोड़ता है या संसार के सभी लोग यदि उसके विरोधी हो जाते हैं, जैसे मीराबाई के सभी लोग विरोधी हो गए, तो छोड़ करके चली आई। किसी स्थिति में जब कृष्ण की अनुभूति हो गई तब मेरा आपको स्नेह आशीर्वाद है। हाँ, ऐसी स्थिति में घर छोड़ो, अपनी स्त्री से या पति से लड़ाई हो गई, थोड़ी सी अनबन हो गई, बस अब मैं संसार नहीं करूंगा, मैं चला, किस लिए? क्रोध से। ये नहीं टिकेगा, ये बैराग्य नहीं टिकेगा। वो आप जहां रहेंगे वहीं पर नया संसार कर लेंगे, दूसरों का उपकार कर रहे हैं, आप उपकार क्या करेंगे? खुद ही उसी में पड़ करके दुख करके मरेंगे। वैष्णव सदाचार इत्यादि सब छूट जाएगा, क्योंकि शक्ति वैसी नहीं है। वैष्णव एडिकेट को पालन नहीं कर सकेंगे, धीरे धीरे हरि कथा नहीं सुनने को मिलेगी, समझेंगे हम ही एक ऐसा हो गया, मैं गुरु हो गया। इसलिए ये सब चीजें आनी चाहिए। भजन का तरीके हैं, इसलिए संसार में रहते हुए भी मर्यादा संसार का पालन करना चाहिए। छोटी छोटी बातों के लिए यदि लड़ेंगे तो फिर भगवान का भजन क्या करेंगे? उसकी उपलब्धि आपने क्या की? गुरु के उपदेशों को पालन कहां किया? प्रेम में, साधन में अपना स्वार्थ बलिदान करना होता है, ऐसे नहीं होता। वो ट्रेनिंग कहां से होगी? अपने घर से ही होगी, अपने घर से ही ट्रेनिंग होगी उसकी। इसलिए गुरु के चरणों में सब कुछ समर्पण कर दो। जो त्यागी लोग हैं, गृहस्थ लोग भी ऐसा करेंगे। गुरु जी शासन भी करते हैं, सबको मान लेना पड़ेगा, और घर में भी वैसे ही अत्यंत सहिष्णु बन करके रहना होगा। तब तो भाई भजन होगा, तब हमारी बातें भी आप लोग मान करके चलेंगे, आप लोग भी साधन भजन अग्रसर होंगे। नहीं तो अपने आप में कलह होगा और गुरु के प्रति अश्रद्धा आएगी। इस बात को समझ रखिए। वो समझे ओ देखो तो गुरु जी का उन पर स्नेह अधिक है हमारे प्रति, वो कहे ओ गुरु जी का इन पर स्नेह है, इनको ये कुछ अधिक स्नेह। गुरु जी के प्रति श्रद्धा जाएगी और गुरु पर श्रद्धा गई और भगवान का भजन भी खत्म हो गया। बातें तो छोटी हैं किंतु बड़ी महत्व की है। इनसे जीव को अपने जीवन में आचरण करके भगवान का भजन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु इन छोटी छोटी बातों को लेकर के और बड़ी अपने परिकरों के साथ में व्यवहार करके उनको कड़ी सजा दी और दे करके सबको सिखलाया। जंगल में जा रहे हैं महाप्रभु, वृंदावन में आ रहे हैं, उनके साथ में एक ब्राह्मण है और एक और व्यक्ति है। चलते चलते महाप्रभु जी ने कहा तुम्हारे पास में कुछ भजन करने के बाद में मुख शुद्धि है। मुख शुद्धि माने क्या? कोई आंवला ले लेते हैं, कोई सौंफ ले लेते हैं, कोई हरे ले लेते हैं, कोई और कुछ ले लेते हैं। है तुम्हारे पास में कुछ? तो हाँ है। क्या है? तो छोटी हरी का एक टुकड़ा, दो चार टुकड़े हैं मेरे पास, तो दे दो। एक ले करके महाप्रभु दिया, चल। दूसरे दिन भोजन करने के बाद में कुछ उन्होंने कहीं से सात पत्ता लाया और किसी घर से चावल लाया या कुछ लाए और लेकर के कुछ बनाया और महाप्रभु जी को खिलाए, अपने भी खाए, कभी उपवास कभी कुछ, चलते जा रहे। तो उस दिन कुछ खा करके तुम्हारे पास में और है? तो हाँ। ये तुम कल के लिए भी रख रहे हो और त्यागी बन रहे हो, आप हमारे साथ में मत चलो, नहीं तो तुम्हारी प्रवृत्ति हमारे अंदर में आ जाएगी, फिर भजन नहीं होगा, संग्रह करने की प्रवृत्ति आ जाएगी। उन्होंने कहा आप आज से कान पकड़ते हैं, आप आज क्षमा कीजिए, अब मैं नहीं हुआ। फिर ये त्यागियों का महादर्श महाप्रभु ने, गृहस्थों के लिए भी ऐसे आदर्श दिखाए। इसलिए इन सब आदर्शों को मान करके हम चलेंगे तो सहज रूपे भजन कर सकेंगे, और जब योग्यता होगी संसार छोड़ने की तो फिर वो प्रभु उसकी व्यवस्था करेंगे। उन पर भी थोड़ा सा निर्भर कीजिए, गुरु के ऊपर। जब तक नहीं हो रही है अपनी भक्ति को छिपा करके, जैसे कपूर को हम छिपा करके रखते हैं नहीं तो गंध उड़ जाएगी, ऐसे अपनी भक्ति को हृदय में छिपा करके मत दिखले ये हमारी भक्ति है। खूब सावधानी से रहिए। इसकी शिक्षा कैसे दी महाप्रभु जी ने? महाप्रभु जी संन्यास लिए लेकर के समस्त नवद्वीप के लोग, करोड़ों लोग महाप्रभु को दर्शन करने के लिए भीड़ जमा हो गई। शची मैया भी मायापुर से आई उनको शांतिपुर में दर्शन करने के लिए, रोने लगी
महाप्रभु जी उनके चरणों में गिर गए, अपना सिर रख दिया और मैया रो रही है। उन्होंने कहा कि मैया, हमने बड़ा भारी अन्याय किया है, मैंने तुमसे पूछे बिना मैंने संन्यास ग्रहण कर लिया, मैंने अन्याय किया, हमें स्वीकार करता हूं, यदि कहो तो मैं संन्यास छोड़ करके तुम्हारे पास आ जाऊं। ठीक से मैया ने रोते रोते कहा, जब ले लिया संन्यास तो ले लिया, अब मैं तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा। तुम एक बात करो, जब तक यहां रहो दो चार दिन, मैं रसोई बनाऊंगी और तुम खाना, और मैं निकट से तुम्हें देख सकूं, और तुम हमसे दूर मत जाना, वृंदावन में मत जाना, मैं बूढ़ी हो गई हूं, इतना नहीं जा सकती चलकर, उसमें पैदल रखा रास्ता, इसलिए जगन्नाथपुर में रहेगा तो तुम वहां से गंगा स्नान करने के लिए आएगा, या मैं वहां जाकर के जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाऊंगी तो तुम्हारा दर्शन हो जाएगा। और एक छोटा सा राजा का लड़का वहां पर आया, वो कौन था? रघुनाथ दास, राजा का लड़का, महाप्रभु के दर्शन के लिए छटपटा रहा, बहुत धनी राजा का लड़का, बहुत सुंदर, रोने लग गया, जब मैं आपके साथ चलूंगा। उसके माता पिता बांध करके रखते और वो छटपट करता जी घर छोड़ करके चला गया। एक मोटी सी रस्सी लेकर के उसको बांधा, वो रस्सी मोटी सी जानते हैं क्या है? बड़ी सुंदरी, अपूर्व सुंदरी, रूपवती, गुणवती एक किशोरी से उसकी शादी कर दी। इससे संसार में और कोई बड़ा बंधन नहीं, किंतु वो बंधन भी कुछ असर नहीं कर सका। तो वो रोने लगा, जब मैं आपके साथ में चले, महाप्रभु जी ने उसे समझाया, मरुकट वैराग्य ना कर लोक दिखाइया, जथा यज्ञ विषय भूया अनाशक्त है, भालो ना खाइबे, भालो ना परिबे, अमानी मानत है कृष्ण नाम सदा। क्या उपदेश दिया? अभी तू परिपक्व नहीं हुआ है, छटपटाते ही नहीं, उसके लिए कुछ और चीज की जरूरत है। तुम जाकर के अपने इस वैराग्य को नहीं रक्षा कर सकता वहां मेरे साथ, इसे अभी घर पर रहो, छटपटाओ मत। मरकट वैराग्य काम नहीं करता। मरकट वैराग्य माने क्या? मरकट माने बंदर। हम लोगों में आजकल जो वैरागी है उसमें 99% हम मरकट वैरागी हैं, 99%, 1% शुद्ध वैरागी। इसलिए मरकट वैरागी होने के कारण ही हम लोगों को गुरु से नहीं बनती, वैष्णव से नहीं बनती, अनबन हो जाती है। कारण क्या है? अपना कुछ स्वार्थ है ना, इसलिए तो परस्पर विवाद होता है। या तो गुरु ठीक नहीं है या चेला ठीक नहीं है, दोनों में कोई एक तो ठीक है वो होगा ना। या ऐसा भी हो सकता है कि गुरु और चेला दोनों ही ठीक ना हो, ऐसा भी हो सकता है। कलयुग में ये सभी चीजें ठीक है, तब कभी कभी ऐसा हो सकता है जी गुरु शुद्ध होने पर भी, सिद्ध शुद्ध में ही बड़ा भारी कठिन है। तो महाप्रभु इसलिए उनको शिक्षा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? मरकट वैराग्य ना। मरकट माने बंदर। बंदर धोती नहीं पहनता, कपड़ा नहीं पहनता, बंदरी भी साड़ी और कुछ नहीं पहनती, घर में रसोई उनकी नहीं बनती, खेती भी नहीं करते और नौकरी भी चाकरी भी नहीं करते, अपना घर भी नहीं है, है कुछ भी घर फार कुछ नहीं, घरों के छतों पर डोलेंगे, पेड़ों पर डोलते हैं इधर उधर, विवाह शादी में कुछ खर्च नहीं, संतान पालन में भी कोई खर्च नहीं, उनको बड़े पक्के वैरागी हैं। किंतु उनकी नजर कहां रहती है? दो चीजों पर देखते हैं, कहां किस घर में किस कोने में कहां क्या चीज है और लपक लेते हैं। यदि ऐसे नहीं होगा तो पहले तो डरा देते हैं और वहां पर जाकर के ले लेते हैं, और दूसरी नजर रहती है बंदरी की बंदर पर, बंदर की बंदरी पर। बस संतान पैदा करना और कोई भी भोग की चीज है उसे लपक करके छीन लेना दूसरों से, और उनको डराना भी, उनकी चीज लेना भी और उन्हीं को डराना धमकाना,
ये बंदरों का मरकट बैराग्य कहलाता है।
वो बैराग्य नहीं, सबसे भोगी वो जानवर है।
तो तुम ऐसा मत करो, भजन करते 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 हमारे आदेशों को पालन करके कहीं भी संसार में रह करके आसक्ति मत करो, संसार में रहो आसक्ति मत रहे,
मरकट बैराग्य ना करो, लोक दिखाइया जथा योग्य विषय भोज अनाशक्त विषय को भोगो, हवा नाक से लो नहीं तो मर जाएगा, कुछ भोजन खाना जरूरी है, सद व्यवहार से सद नौकरी से सद उपाय से उपार्जन करके कुछ ठाकुर जी को भोग देकर करके उनका अवशिष्ट तुम ग्रहण करो, किसी चीज में आसक्ति मत रखो, न पति में न स्त्री में न पुत्र में न घर में, आसक्ति रहेगी भगवान के चरणों में। कोई कोई कहते हैं जो गुरु के चरणों में आसक्ति रखो, खबरदार ये ठीक गुरु नहीं के चाहता, वो आपकी आसक्ति लेकर के कृष्ण के चरणों में यदि निवेदन कर देता है तो वो गुरु है, अन्यथा आपकी आसक्ति को लेकर के आपकी आसक्ति का वो भोग करता है तो वो गुरु नहीं है। गुरु के ये सब लक्षण है, आपके किसी भी चीज को लेकर के भगवान के चरणों में अर्पण करते, आपका संबंध भगवान से यदि स्थापित कर देता है तो वो गुरु है, और नहीं तो भगवान से संबंध न स्थापित करके अपना स्वयं संबंध स्थापित करता है और आपके सब चीजों का मालिक बन जाता है, या तुम्हारे रुपयों का मैं मालिक हूँ, तुम्हारे सब चीजों का मैं मालिक हूँ, और उसका भोग स्वयं करता है तो गुरु क्या है। इसलिए महाप्रभु जी कहते हैं अमानी मानत है कृष्णाम सदा, अमानी किसी मान की लालसा मत करो, किसी चीज में आसक्त मत हो, अनाशक्त रह करके विषयों का यथा योग्य रूप में भोग करो। सूरज के बिना लाइट के हम रह नहीं सकते, अनाशक्त, पानी पिए बिना नहीं हो सकते, ठाकुर जी का भोग लगा करके पानी, जो चीज भगवान को निवेदन करके नहीं ली जाती है वो पाप चीज है, इसलिए इस रूप में रह करके और उनके प्रति अपना जो व्यवहार है कोमल व्यवहार, आसक्त मत हो किंतु व्यवहार ठीक रहना चाहिए एक दूसरे के प्रति, दूसरों को ऐसा हम व्यवहार करें जो वो भक्ति मार्ग में अधिक बढ़ जाए, पति करे पति का कर्तव्य है कि स्त्री को ऐसे सहायता करे जो उनकी पत्नी भगवान के चरणों के अधिक निकट में, बच्चे को इस प्रकार से शिक्षा दें कि बच्चा भी भगवान की तरफ निकट में, पत्नी इस प्रकार से व्यवहार करे पति के प्रति जो उनकी सब प्रकार की सुविधाएं करें जैसे वो भगवान की तरफ में बढ़ सके, यदि इस प्रकार से होगा तो फिर विवाद किस चीज का रहेगा, और नहीं तो विवाद होगा और संभावी, और यह विवाद पहुंचेगा गुरु के यहाँ, गुरु से भगवान के प्रति, गुरु को भी छोड़ेंगे और भगवान को भी छोड़ देंगे, ये भगवान बेकार का, इसलिए इन चीजों को अच्छी तरह से समझ करके हम लोग को चलना चाहिए। महाप्रभु जी की इच्छा से वो चले गए घर, घर जाकर के अब बड़े काम करने लगे, जमींदारी का काम करने लगे, देखने लगे जमींदारी से पैसे आते उसका वसूल करके पिताजी के हाथों में दे देते, एक पैसा अपने लिए नहीं रखते, पॉकेट खर्च हमको, अभी भाई है काम कर रहा है हमारे साथ में तो उसको पॉकेट खर्चा चाहिए, बेटा है तो बेटे को भी पॉकेट खर्च चाहिए, सबको पॉकेट खर्च चाहिए, पहले ये सब नहीं, भगवान की सेवा के लिए पॉकेट खर्च मत रखो कुछ, चाहे गृहस्थ हो चाहे त्यागी हो। तो इस तरह से वो काम करने लगे, अब मैया को मैया भी कहने लगे, इस तरह से सब चलने लगे, भीतर से वो भजन करने लगे, धीरे 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 इतनी अधिक प्रीति बढ़ी कि रोक न सके, नित्यानंद प्रभु जी की उनके प्रति कृपा हुई और अंत में आसानी के साथ से सहज रूप में छोड़ करके महाप्रभु के चरण में पहुंचे।
कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषये गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय कदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। बेश आनंदेर कथा श्री कृत रत्न गौड़ीय मठ है, वार्षिक उत्सव एवं नाट्य मंदिर भित्ति स्थापन उत्सव है। विभिन्न जगह के सन्यासी वृंद, ब्रह्मचारी वृंद एवं सज्जन मंदिर एकत्रित हुए। हमेशा प्रथमे हमार परमाराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान किशोर गोस्वामी महाराज श्री चरण कमले कोटि कोटि श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करें। पश्चात उपस्थित श्री दंडी पादगण, ब्रह्मचारीगण, वैष्णव एवं वैष्णवीगण सकल के हमार यथायोग्य अभिवादन हमार स्वीकार। गत परसो परसवा एवं गत कल्ल सुंदर भावे ते नगर संकीर्तन हुए छे। आज के काल के संध्या समय अनेक रात्र हुए खोले बेश सुंदर हरिकथा परिवेशन करा हुए छे। आज के सकाल वेला भित्ति स्थापन यज्ञ इत्यादि बेश सुंदर भाव से अनुष्ठित हम मन करी सब हमारे गुरु पाद पद्म अहेतु की कृपा तारी है कितु कृपा थे। श्रीपाद पर्यटक महाराज खूब अल्प समय थे बेश परिश्रम करे सब गुरु भाई भगनी एवं वैष्णवगण के लिए एखने सुंदर सुरम्य न चूड़ा विशिष्ट श्री मंदिर निर्माण करे अब सुंदर भावे एक नाट्य मंदिर प्रयोजन से जन्न तहार उद्योग करे हमारा सकली ताके विषय से सब प्रकार समर्थन एवं सहाय कर जाते एवटी तातर करे हुए तब किसर जन्न किसर जन्न करा हो শুধু ভবন নির্মাণের জন্য নহে যাতে শুদ্ধ ভক্তি প্রচার হোক শুদ্ধ ভক্তগণ প্রস্তুত হোক। আজকাল যেরকম ভাবে আমাদের ধারা চলছে তাতে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি প্রবেশ করছে। এখন পাল্লা কীর্তন আমাদের আরম্ভ হয়েছে, রস কীর্তন আমাদের আরম্ভ হচ্ছে, বেশ লম্বা লম্বা সুরেতে মহামন্ত্র খুব লম্বা সু হ্যাঁ করে, এইসব আমাদের ধারা নহে। এতে আমাদের চ্যুত হওয়ার সকল কারণ উপস্থিত, আমরা এখনই শাসন না করলে তারা বেড়ে গেলে আবার ফের শাসন করা অসম্ভব হয়ে যাবে। তারা শিক্ষা করবে এইসব বিষয়ে আমাদের ধারা ঠিক রাখতে হবে যাতে শুদ্ধ ভক্তি প্রবাহ আমাদের ঠিকভাবে চলে। যদি এই রস কীর্তন ছড়া কীর্তন আর এইসব যদি হয় তাহলে মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তে মধ্যে আমরা প্রবেশ করতে পারবো না। এই জন্য এইসব শিক্ষার এটা কেন্দ্র মঠ আমাদের প্রচার কেন্দ্র এবং শিক্ষার কেন্দ্র যাতে চৈতন্য মহাপ্রভু পরবর্তীকালে তো স্বরূপ দামোদর রায় রামানন্দ আর রূপ গোস্বামী সব স্বর্গ স্বামীগণ পরবর্তীকালে থে আরো কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ওদের পথ ধারাতে শ্রীকৃষ্ণ শ্যামানন্দ প্রভু শ্রীনিবাস আচার্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রী ভক্তি বিনোদ ঠাকুর বন্দে বিদ্যাভূষণ এসেছেন ওই সব ধারা নিয়ে আমরা চলব, অনচেত আমরা এই ধারা থেকে আমরা চ্যুত হয়ে যাব। এই জন্য প্রচুর রূপেতে শিক্ষা আমাদের করা দরকার। ওদের কি প্রচার ধারা ছিল, তারা কিসের জন্য চৈতন্য মহাপ্রভু এসেছিলেন? আজকে বিশ্বেতে সর্বত্র মহাপ্রভুর কথা প্রচার হচ্ছে, সব লোক তাহা জানছে যে সে তার কি সিদ্ধান্ত ছিল, কি জন্য এসেছিলেন জগৎকে দিতে, কি দিতে এসেছিলেন। যদি তা না হয় তাহলে আমরাও সহজিয়া সখী ভেকি তারপরে যত মত তত পথ পরমানন্দ ইত্যাদি সমাজ সেবা লাঠি ভাঙানো এসব মধ্যে আমরা। এই জন্য আমাদের খুব স্ট্রিক্ট ভাবে চৈতন্য মহাপ্রভু ধারা নিয়ে আমাদের চলতে হয়। কালকে আমি আসতে পারিনি, ক্লান্ত ছিলাম, এখানে হরি কথা হলো, তার মধ্যে আপনার বুঝে রাখবেন প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রকাশানন্দ সরস্বতী দুজন এক নন, এইগুলি আমাদের জানা উচিত যারা সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব ব্রহ্মচারী রাজ্যে ভবিষ্যতে প্রচার করবে, এইসবগুলি সিদ্ধান্তগুলি ভালোভাবে জানবে তারা, নচেত তারা ভুল ভ্রান্তি করবে। এই সহজিয়া রায় এই সবগুলি ধোঁয়া তুলেছে যে প্রকাশানন্দ অপ্রবোধানন্দ সরস্বতী দুজন একটি ছিল, চৈতন্য ভাগবতে লেখা আছে যখন চৈতন্য মহাপ্রভু গায়া থেকে ফিরে এসেছেন সন্ন্যাস নেবার প্রায় দু এক বছর পূর্বে, তিনি বলছেন প্রকাশ কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশানন্দ, সেই বেটা মোর অঙ্গ করে খণ্ড খণ্ড, কাশীতে প্রকাশানন্দ সরস্বতী বলে একটা মায়াবাদী বলে যে ভগবানের অঙ্গ নাই, ভগবানের রূপ নাই, ভগবানের গুণ নাই, লীলা নাই, তার পরিকর বৈশিষ্ট্য নাই, এই বলে আমার অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করছে, বেটা শ্বেত কুষ্ঠ হয়েছে তথাপি তার সেটি বুঝতে পারছে। পরবর্তীকালেতে দু বছরের পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করে, সন্ন্যাস গ্রহণ করে তিনি চলে গেলেন কুড়িতে, এবং কুড়ির পরে এক বছরের মধ্যে তিনি তার বিশ্বরূপ ভ্রাতাকে খোঁজ করবার জন্য তিনি দক্ষিণ ভারতে গেলেন, যেতে যেতে ওখানেতে গোদাবরী তটেতে রায় রামানন্দের সঙ্গে মিলন হলো, এবং তারপরেতে শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত হলেন। যখন শ্রীরঙ্গমে তো উপস্থিত হলেন তখন ওখানে চার মাস ছিলেন, চার মাসের মধ্যে ছিলেন কোথায়, ওইখানে একজন ব্রাহ্মণ পরিবার ছিল, সে ব্রাহ্মণ পরিবার তিন ভাই ছিলেন, ভেঙ্কট ভট্ট, ত্রিমল্ল ভট্ট এন্ড প্রবোধানন্দ সরস্বতী, আর বড় যে জ্যেষ্ঠ জন ছিলেন ভেঙ্কট ভট্ট, তার পুত্রের নাম ছিল গোপাল ভট্ট, তখন তার বারো তেরো বছরের বয়স, তিনজন শ্রী সম্প্রদায়ের দিক, চারজনই শ্রী সম্প্রদায়ের দীক্ষিত এবং অত্যন্ত তত্ত্বজ্ঞ বেদ শাস্ত্রজ্ঞ এবং সব বিষয়তে পারঙ্গ তারা বৈষ্ণব ছিল, সদাচার সম্পন্ন। সেই সময়তে তিন ভাই মহাপ্রভুর কথা শুনে তার সেবা করে তার যে চিত্ত পাল্টে যায়, এবং তারপরে তারা মহাপ্রভুর অঙ্গত হল, মহাপ্রভু তাদেরকে একেবারে কৃষ্ণের পরম ভক্ত করে দিল। তারপরে গোপাল ভট্ট গোস্বামী এখানে আসেন বৃন্দাবনে, এই গোপাল ভট্ট গোস্বামী যখন বারো তেরো বছর ছিলেন তখনই তিনি প্রবোধানন্দ সরস্বতীর কাছে তিনি পড়ালেখা করেছিলেন এবং মন্ত্র দীক্ষা ইত্যাদিও নিয়েছিলেন তাহলে, এইরকম সেগুলি বর্ণনা আছে। সেই প্রবোধানন্দ সরস্বতী যদি প্রকাশানন্দ হতেন তাহলে কিরকম ভাবে আবার তিনি চলে যাবেন মহাপ্রভুর জন্মে, মহাপ্রভুর সন্ন্যাস নেবার দু বছর পূর্বে তিনি প্রকাশানন্দ থাকবেন, ওখানে মহাপ্রভু বিচারধারা খণ্ডন করছে, আবার সে সঙ্গে সঙ্গে কিরকম ভাবে চলে আসলো মহাপ্রভু যখন গেলেন, তখন প্রবোধানন্দ সরস্বতী কিরকম সে হয়ে যাবে, শ্রী সম্প্রদায়ের দীক্ষিত কিরকম হয়ে যাবে, আবার ফের এক বছর পরে মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবনে যাচ্ছেন তখন সে কাশীতে আবার মায়াবাদী আবার প্রকাশানন্দ হয়ে গেল, তো কবার বৈষ্ণব হলো আর কবার আবার মায়াবাদী হলো, এইসব জ্ঞান যাহাদের নাই অপসিদ্ধান্ত তারা। একটি মায়াবাদী যেরকম ভাবতে প্রবোধানন্দ সরস্বতী সবগুলি গ্রন্থ লিখেছেন রসগ্রন্থ, ওই রকম ভাবতে এক মায়াবাদী বৈষ্ণব সম্প্রদায়তে আসলেও এরকম গ্রন্থ লিখতে পারে, নদীপ শত বৃন্দাবন শত প্রবোধানন্দের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সঙ্গীত মাধব নাকি রাধানিধি, আরে আরে একটা আছে চৈতন্য চন্দ্রামৃত, কিরকম রসগ্রন্থ এইসব, রাধা রসুধানিধি কর্ণা কৃষ্ণ কর্ণামৃত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, কৃষ্ণ কর্ণামৃত বিল মঙ্গলের হচ্ছে কৃষ্ণ পর গ্রন্থ, রাধারে কৃষ্ণের সেবা করু এরকম বিল মঙ্গল ঠাকুর তাহা লিখেছে। আর প্রবোধানন্দ সরস্বতী কি কৃষ্ণই রাধারানী সেবা করু, তাহলে শ্রেষ্ঠ কে, কত উচ্চ তাহার বিচারধারা সব, সে একজন মায়াবাদী এরকম লিখতে পারে? গুরু মহারাজ বক্তৃতা ছলেতে লেখাতে তিনি এমশিল প্রভুপাত তিনি এইসবগুলি বেশ ভালোভাবে তিনি জানিয়েছেন যে প্রবোধানন্দ সরস্বতী কখনো ওই প্রকাশানন্দ হতে পারে, মায়াবাদী হতে পারে, কখন হবে? বাল্যকাল থেকে তো শ্রী সম্প্রদায়ের মধ্যে আছেন, আর মহাপ্রভু তাহাকে নিয়ে আসলেন মহা এই রাধাকৃষ্ণের ভজন পদ্ধতিতে। অতএব এইসবগুলি বিচার ঠিক নয়। দ্বিতীয় কথা, আমি শুধু মুখ বন্ধ করে ছাড়ছি, তারপরে বৈষ্ণব বলবে, তারপরে আমি বলবো। একটি কথা আরো, চৈতন্য চৈতামৃতে লেখা আছে যে রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ, এই দুই হয়তো তাহার লীলার উদ্গম। প্রেম রস নির্যাস করিতে আস্বাদন, আর রাগ মাগ ভক্তি লোকে করিতে প্রচার। কি তাৎপর্য? মহাপ্রভু জগতে এসে তিনি কি জগৎকে দিয়েছেন, কেসে কিসের জন্য এসেছেন, একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণন করছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। কৃষ্ণ কে? মহাপ্রভু, রাধা ভাব এবং দ্যুতি সুবলিত শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, রাধারানী ভাব এবং কান্তি নিয়ে এসেছেন। তিনি রস নির্যাস, শুধু রস নয়, প্রেম নয়। মহাপ্রভু পূর্বে ভক্তি ছিল, নারদ ঋষি, প্রহ্লাদ, আর বহু লোক সব ভক্তি ছিল। নারদ সূত্র, শাণ্ডিল্য সূত্র ভক্তির গ্রন্থ লেখা আছে। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর এসেছিলেন, জয়দেব গোস্বামী এসেছিলেন, অন্যান্য সব ভক্তরা এসেছিল, মধ্বাচার্য, রামানুজ, বিষ্ণু স্বামী, নিম্বাদিত্য ইত্যাদি ভক্তরা সাথে তারা ভক্তি ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, মায়াবাদকে খণ্ডন করে। কিন্তু তাহাদের যে প্রচারিত যে ভক্তি, ভক্তি রস নয়, রস নির্যাস, আর ভক্তি রস নির্যাস তো বহু উপরের কথা। তারা ভক্তি প্রচার করেছে, কিন্তু অন্যাভিলাষিতা শূন্যের যে ভক্তি, চৈতন্য মহাপ্রভু যে ভক্তি প্রচার করেছেন, জগৎকে দিয়েছেন, তার ধারে কাছেও তাহারে যায় না কেউ। রূপ গোস্বামী, পুদ্গলীন মণি, ভক্তির স্বামী সিন্ধু ইত্যাদি যে ভক্তির কথা লিখেছেন, তার গ্রন্থগুলিতে লিখেছেন, এর ধারে একবারে প্রবেশ করতে পারে নাই তারা। অতএব তারা ভক্তি, ভক্তি মানে কি? শ্রবণম, কীর্তনম, বিষ্ণু স্মরণম, পাদ সেবনম, অর্চনম, বন্দনম, দাসম, সাক্ষাৎ আত্মনিবেদন, এই পর্যন্ত। আর কি বললেন? সবাই পুনসাং পরো ধর্ম যত ভক্তি রধক্ষজে অহেতুক্য প্রতিহতা জয়াত্মা সম্প্রসিদ্ধি। অধক্ষজদের তত্ত্ব, অধক্ষজ তত্ত্ব কে? নারায়ণ। তাহার প্রতি যে অহেতুকি অপ্রতিহতা তৈধারাবত অবিচ্ছিন্ন গতিতে যে চিত্তের বৃত্তি লেগে যায়, তাহাকে বলে ভক্তি। লক্ষণম হি ভক্তি যোগস্য নির্গুণস্য উদাহৃতম অহেতুক্য অব্যবহৃতা য ভক্তি পুরুষ ইত্যাদি বলা হয়েছে। কিন্তু ভক্তি রস এটাকে বলে নাই, এটা চৈতন্য মহাপ্রভু রূপ গোস্বামীকে শিক্ষা দিয়েছে। এবং তিনি ভক্তি রস কিরকম হয় এটা তিনি দিয়েছেন। আর প্রেম রস নির্যাস এটা বুঝতে গেলে বহু উপরের কথা, সাধারণ লোকের মেধাতে এইগুলি প্রবেশ করবে না। মহাপ্রভু যে জন্য এসেছে ওই হচ্ছে রাধায়া প্রণয় মহিমা ইত্যাদি। আর দ্বিতীয় কথা, রাগ মার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ। রাগ মার্গ মানে কি? মহাপ্রভু আসলে রাগ মার্গ ভক্তি, প্রথমে রাগ কি? নাই তো প্রেম আর রাগ কে এক মনে লোক করে দিয়ে মিস গাইড হয়ে যাবে। আদৌ শ্রদ্ধা তত সাধু সঙ্গ, तो अनर्थम निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव भाव अभाव दू रकमे स्वरूप सिद्धिगत भाव आर वस्तु सिद्धिगत भाव आ ब्रजेते जन्म तापर शुद्ध प्रेम से प्रेम स्नेह मान प्रणय अनुराग है तो चले जाए तापर राग है रागर लक्षण की रागर लक्षण होच्छे जावद आश्रय वृत्ति जखन प्रेम परिवर्तित होते 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 परिपक्व होते 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 एमन एक स्थिति ते पहुंचे जाबे जाते राग जावद आश्रय वृत्ति के अवलम्बन माने कि प्रेमेर विषय होच्छे कृष्ण अखिल रसामृत सिंधु आ प्रेमेर आश्रय के बहु रकमेर भक्त आछे पांच रसेर भक्त आछेन तारा रसेर आश्रय तार मध्ये आबार कतगुली तारतम्य आछे एई आश्रय मध्ये कतगुली ज्ञानी भक्त कतगुली शुद्ध भक्त तापरे कतगुली प्रेमी भक्त प्रेम पर भक्त तापरे प्रेमातुर भक्त ए पर्यंत भक्त संज्ञा समाप्त एर मध्ये प्रहलाद महाराज इत्यादि ज्ञानी भक्त ज्ञानी भक्त माने निर्विशेष न एरा देखे कि सर्वत्र भगवानेर स्तुति है प्रत्येक जीवन मध्य भगवान के दर्शन करे आर कृष्ण यदि आसें ताहा के बोलबे जैसे इनी भगवान सदैश्वर्य परिपूर्ण एरकम दर्शन करे किंतु ऐश्वर्य शिथिले ऐश्वर्य मोर प्रीति एक जन ताके ज्ञानी भक्त बोला हुए छे तार परे बोले छे शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज जो तिनि साधक प्रहलाद महाराज सिद्ध तथापि तार पेखा श्रेष्ठ तिनि अम्बरीश महाराज शुद्ध भक्त निजे हाथे थेके तार अचन पूजन वंदना स्तव स्तुति चिंतन इत्यादि करछेन एक जन शुद्ध भक्त तार पेखा प्रेमी भक्त हनुमान अनेक श्रेष्ठ सब समय तिनि भगवानेर सेवा दिए व्यस्त तार अपेक्षा आवाज पांडव पांडव मध्य अर्जुन इत्यादि तातिक बहु श्रेष्ठ हनुमान रामेर संगे एक पलंग खेते बसते पारेन ना आलिंगन करते पारेन ना तार संगे नाना प्रकारे ते कथा बोलते पारेन ना सीता देवी इत्यादि आसले ओखान थेके उठे जेते हबे আর এরা পাণ্ডবরা কিরকম এক বিছানাতে থাকতে পারে অর্জুন আমার ঘোড়া রথগুলি নিয়ে চল কৃষ্ণ নিয়ে যাবে কৃষ্ণ যে তার ভগ্নী সুভদ্রা দেবীকে বিবাহ করে দিয়েছেন সেই অর্জুনের কাছে অর্জুন তার সখা মিত্র সব রকমের তার এই কলঙ্ক উপস্থিত এক সময় নারদ ঋষি এসেছেন কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে অর্জুন পলঙ্কের একদিকে মাথা করে শুয়ে আছেন আর কৃষ্ণ অন্যদিকে মাথা করে শুয়ে আছে কৃষ্ণের পায়ে অর্জুনের বুকে হয়ে চলে গিয়েছে আর অর্জুনের পায়ে কৃষ্ণের বুক হয়ে আবার অন্যদিকে গিয়েছে অর্জুনের পায়ে সত্যভামা রুক্মিণী ইত্যাদি চামড় দুলাচ্ছেন আর কৃষ্ণের পায়ে যেদিকে গিয়েছে সেখানেতে দ্রৌপদী আর সুভদ্রা তারা চামড় বেজল করছে অর্জুন রোম রোম সাকে বলছেন কৃষ্ণ কৃষ্ণ এইরকম সখা ভাব এই জন্য তিনি হনুমান প্রেমী যে আছেন তা থেকে শ্রেষ্ঠ আর এই উদ্ধব থেকে শ্রেষ্ঠ কে পাণ্ডব থেকে শ্রেষ্ঠ কে উদ্ধব কৃষ্ণ অর্জুন কে কি কেউ কে ব্রজেতে পাঠাইতে পারেন না কাকে পাঠাইলেন উদ্ধবকে পাঠাইলেন তিনি কৃষ্ণের মিত্র সখা সেনাপতি মন্ত্রী সবকিছু একসঙ্গে থাকেন তারা অত্যন্ত বন্ধুত্ব এই জন্য কেউ কে ব্রজেতে না পাঠিয়ে গোপীগণের কাছে তিনি পাঠিয়েছিলেন অতএব পরপর শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে সকলের মধ্যে প্রেম আছে বিশেষ করে হনুমান পাণ্ডবগণ আর উদ্ধব প্রেম আছে কিন্তু উদ্ধব সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হলেও বৃন্দাবনেতে যখন গেলেন তখন ওদের মহিমা দেখে বলছেন আশা মহ চরণ রে আগে বন্দে নন্দ ব্রজে স্ত্রী নাম পাদ্রিনম ভিক্ষ আমি গোপী গণে নন্দ ব্রজেতে যারা মুখিয়া তাদের চরণ দিন আমি বন্দনা যে দিশাতে আছে সেই দিশাকে তিনি প্রণাম করছেন অত গোপী গণের মহিমা উদ্ধব ব্রজেতে থাকলেন না কেন থাকলেন না কেন কালে মথুরাতে ঘুরে আসলেন দ্বারকাধীশ প্রতি তাহার একটা প্রীতি রয়েছে বেশি প্রেম আছে ওখানে কিন্তু ব্রজে প্রেম তার মধ্যে নাই তিনি থাকতে পারেন এই জন্য গোপীর মহিমা বলে তিনি শান্ত হয়ে গেলেন আর এই সব গোপী মধ্যে ললিতা বিশাখা ইত্যাদি আরো শ্রেষ্ঠ এদের মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা আরো শ্রেষ্ঠ এই রাধিকা যে ভাব এটি আস্বাদন করবার জন্য আর দেবার জন্য কি আসলে রাগ মার্গ ভক্তি এই রাগটা কার মধ্যে আছে এই সব ব্রজ গোপী মধ্যে রাগ মানে কি রাগ মানে হচ্ছে অনুরাগ এইটা পরিপক্ক হলে অনুরাগ এর লক্ষণ দিয়েছেন উজ্জ্বল ইন্দ্রমণিতে যাবৎ আসে বৃত্তি কৃষ্ণ প্রেমের বিষয় হবে আর আশ্রয় কে হবে এই সর্বশ্রেষ্ঠ অত ভক্ত গণের থেকে উন্নত শ্রীমতী রাধিকা আর এমন অবস্থাতে পৌঁছবেন তাদের প্রীতি ভোবে যে সে প্রীতি এমন অবস্থাতে পৌঁছবে যাকে বলে সসম্বেদ্য দশা সসম্বেদ্য দশা কি আমরা এসব আলোচনা করি না কি সসম্বেদ্য দশা রাধিকা বুঝবেন না যে আমি কে কৃষ্ণ বুঝবেন না যে আমি কে প্রেমটাই দুজনকে নাচাবে যে প্রেম প্রয়োজন ওই প্রেম রাধিকাকে নাচাবে কৃষ্ণকে নাচাবে ভক্তকে নাচাবে সব লোকের প্রেমটাই কন্ট্রোল করবে এই জন্য প্রেম হচ্ছে প্রয়োজন ওই প্রেম অত উন্নত শ্রীমতী রাধিকার মধ্যে আছে এইটি বিতরণ করবার নয় রাগ মার্গ ভক্তি আবার রাগ মার্গ কাকে বলে যাদের মধ্যে এইরকম হয় উন্নত ধরনের রাগ আছে ওদের প্রতি লাভ করবার যদি লোভ একটু হয় তাহলে ওইগুলিকে শিক্ষা করে দিয়ে কিরকম ভাবে পাওয়া যায় তার অনুগমন করবে তখন তাকে বলে রাগানুগা চৈতন্য মহাপ্রভু পূর্বে কেউ এটা দেয় চৈতন্য মহাপ্রভু এইটা দেবার জন্য এসেছে কি রাগ মার্গ ভক্তি করিতে প্রচার তাতে হয়েছে কি অনর্পিত চরিং চিরাত করুণে অবতীর্ণ কলৌ সমর্পয়িতুম উন্নত জল রসাং স্বভক্তি শ্রিয়ম হরিহ পূর্ণ সুন্দর দূত কদম্ব সন্দিপ্ত সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরত উন্নত উজ্জ্বল রস দেবার জন্য উন্নত উজ্জ্বল রস মানে এখানে কি উন্নত উজ্জ্বল রসান স্ব ভক্তি শ্রিয়ম এই সবগুলি শব্দের তাৎপর্য আছে উন্নত উজ্জ্বল রস দেবার জন্য নয় উন্নত উজ্জ্বল রস শ্রী শ্রী মানে শ্রীমতী রাধিকা তাহার ভিতরে তে আশ্রয় তিনি তাহার ভিতরে তে কৃষ্ণের প্রতি যে অত্যন্ত উচ্চ প্রেম রয়েছে রাগ রয়েছে মহাভাব রয়েছে তাহার শ্রী দেবার ওই শ্রীটা কি ওই শ্রীটা কি শোভা ওই হচ্ছে রূপমঞ্জরী ইত্যাদি ভাব ছিল রূপ গোস্বামীর নিজস্ব ভাব ওইটা দেবার জন্য এই জন্য শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন যে রূপ গোস্বামী চরণ ধুলি হওয়ারই আমাদের সব থেকে শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা এ থেকে বড় জগতে কোনো আকাঙ্ক্ষা হতে পারে না অতএব চৈতন্য মহাপ্রভু এই ভাবটা দেবার জন্য রাধা রানী যে সমস্ত ভাব আস্বাদন করবার যোগ্য আছে শ্রী কৃষ্ণ ওই লোভেতে চৈতন্য মহাপ্রভু হয়ে তিনি এটাকে আস্বাদন করেছে অতএব প্রেম সাধারণ প্রেম যে হনুমানের মধ্যে প্রেম কি উদ্ধব মধ্যে যে প্রেম আছে কি অন্য বৈকুণ্ঠী ভক্তের মধ্যে কি এমন কি সত্য ভামারও প্রেম উন্নত উজ্জ্বল রসময় একমাত্র গোপী ওই ভাবের কিঞ্চিত একটা শোভা অর্থাৎ তাহার দাসিত্ব ভাব দেবার জন্য তিনি এসেছিলেন আর এই রাগ মার ভক্তি তিনি প্রচার করবার জন্য আর নিজে ওই তিনটি ভাব আস্বাদন করবার জন্য এসেছিলেন এই সব তত্ত্বগুলি আমরা যদি ভালো করে বুঝি তাহলে চৈতন্য মহাপ্রভু অবদানের কথা কিছু আমরা একটু স্পর্শ করতে পারব আর এটা না হলে আমরা স্পর্শই করতে পারব অর্থাৎ এই সব বিষয়ে কালকে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছিল এখন আমাদের মহারাজদের মধ্যে आज के हमारे विषय आज सनातन धर्म एम सी चैतन्य महाप्रभु सनातन धर्म संगे महाप्रभु समय की विचार छो आ सनातन धर्म का के बोले ए संबंधे से आज के हमारे वक्तारा सब कुछ बोल रहे माछ खाने लिए से जैसे संगे करते कृष्ण ताई करलें माछ खाने देखल इत्यादि भाई तार भाई भगवान तार पितामह भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य तार ससुर अन्य अन्य सब लोगों का युद्ध के प्रवेश अर्जुन बोलने जे आमी युद्ध करबो ना केन युद्ध करबो ना कुलक्षये कुलक्षये कुल धर्मा सनातनम नश्यन्ति कुल धर्मा सनातनम कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनम सब लोग मारा जाबे जाति आकुल धर्म नष्ट हो जाबे एई सनातन धर्म नष्ट और अर्जुन माने करछे अर्जुन शिक्षा दिच्छेन তিনি বলছেন যে এই জাতি আর কুল ধর্মটাই সনাতন ধর্ম এই নষ্ট হয়ে গেলে সনাতন ধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে আর তিনি দু একবার আরো বলেছেন তখন কৃষ্ণ বললেন যে তুমি মূর্খ হয়ে আর পণ্ডিতের মতন কথা বলো জাতি ধর্ম কুল ধর্ম এইগুলি সনাতন নয় বুঝে রাখো যে সনাতন ধর্ম কাকে বলে মমই বংশ জীব লোকে জীব ভূতা সনাতন জী কখনো মরে না কখনো জন্মগ্রহণ করে না যেরকম কৃষ্ণ আছে নিত্য জীব নিত্য আছে এই জন্য জী হচ্ছে একটি সনাতন আর একটি সনাতন হচ্ছি আমি বেদৈষ সর্বৈ অহম এব বিদ্যঃ সনাতন ধর্মের কথা বেদ বলেছে সেই বেদ বলছে যে সে আমাদের সমস্ত বেদে উপাস্য হচ্ছেন প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ শুধু তাই নয় শ্রীমদ ভাগবতে বলেছে অহো ভাগ্যম নন্দ গো ব্রজৌ কুশাম জলমিত্রম পরমানন্দম পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন যত রকমের ভগবত প্রতীতি রয়েছে যত ভগবানের অবতার আছে ভগবানের অংশ কলা রয়েছে কৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান ইনি হচ্ছেন পরব্রহ্ম ইনি সনাতন ব্রহ্ম পূর্ণ ব্রহ্ম অতএব কৃষ্ণ হচ্ছেন একটি সনাতন আর দ্বিতীয় হচ্ছে অনন্ত কোটি জীব সমূহ এরা হচ্ছে সনাতন এদের ভিতরে যে সম্বন্ধ আছে ওই সম্বন্ধেই হচ্ছে সনাতন ওই সম্বন্ধটা কি শ্রীমদ ভাগবতে স্পষ্ট ভাবতে বলছেন গীতা স্পষ্ট ভাবতে বলছেন গীতা কিছু রেখে শিখে বলছেন সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মাম একম সব ধর্ম ধর্মকে প্রত্যাগ করে দিয়ে আমার শরণাগত হব এই হচ্ছে সর্বোত্তম ধর্ম কিন্তু মহাপ্রভু বললেন কি এই হো বাজ্য আগে ঘর এই সনাতন ধর্মের একটা গোড়ার কথা আংশিক কথা পূর্ণ কথা নয় সেই সনাতন ধর্ম কি ভাগবত বললেন যে আবই সুয়মাণ কৃষ্ণে পরম পুরুষে ভক্তি উপপদ্যতে পুনস শোক মোহ ভয় আবহা সবাই পুনসাং পর ধর্ম যত ভক্তি রক্ষে আহে তুক ব্যবহিতা যা ভক্তি ভক্তি মানে সেবা এই ভগবানের সঙ্গে আর নিত্য যে সনাতন জীব আছে এই ভগবানের যে নিত্য জীবের যে সেবা এই হচ্ছে সম্বন্ধ ভক্তি মানে তাই হয় ভক্তি মানে কি ভাই ধাতু সেবায়াম কিন্তু এই সেবার একটি তারতম্য আছে বদ্ধ জীব ভগবানের সেবা করতে পারে না একটি তাহা সাধন করতে পারে মাত্র কিন্তু এই সেই সাধনটাও নিত্য সাধনটা সাধ্য বস্তু নিত্য যদি হয় তাহলে তাহার সাধনটাও সেটি নিত্য হবে এই জন্য কৃষ্ণ সেবা কৃষ্ণ প্রেম এইটা যদি নিত্য হয় তাহলে তাহার যে সাধন ভক্তি এটা হচ্ছে নিত্য সনাতন এই জন্য তাহাকেও নিত্য সনাতন বলা হবে নিত্য সিদ্ধস্য ভাবস্য নিত্য পরাকাটঙ্গ রীতিশা এই নিত্য কোথা কৃষ্ণের নিত্য পরিকর গণেতে যে কৃষ্ণের সেবা যে প্রবৃত্তি আছে ওইটা নিত্য নিত্য সিদ্ধ ওইটি জীব হৃদয়তে যে প্রকট হয় এইটিকে বলে সাধন। এইটি সাধন সাধনেতে হবে না, এটা ভগবত কৃপা অথবা ভাগবত কৃপাতে এইটা সম্ভব। নিজে সাধনে যশোদা মা কৃষ্ণকে বাঁধতে 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 ক্লান্ত হয়ে গেলেন, ঘর্মান্ত হয়ে গেলেন, বুঝি হে ঠাকুর আমি আমার ছেলেটাকে আমি বাঁধতে পারছি না, সকাল থেকে বাঁধতে 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 দুপুর বেলা হয়ে গেল, ঘর্মান্ত তাহার কলেবার হয়ে গেল, মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, গোপীরা তালি বাজাইতে লাগলো, আরে তুমি একটু ছেটে ছেলেকে তুমি বাঁধতে পারলে না। তো যখনই তিনি ভগবানের শরণাগত হলেন, হে নারায়ণ আমি মুখ কি দেখাবো এই সখীদের কাছে, তখন কৃপয়া শীত সন্ধান, তখন কৃষ্ণ নিজে থেকে তিনি বন্ধন মধ্যে এসেছে, আমার সাধনের দ্বারা তাকে বাঁধতে পারবো না, আমার সাধনের ক্লেশ দেখে যখন ভগবানের কৃপা হবে, কোন ভাগবতগণের কৃপা হবে, তাহলে এই ভক্তি হবে, এই সাধন ভক্তি হব। আমাদের সাধন মানে কি? সাধন হচ্ছে দুই রকম, একটা হচ্ছে কোন একটা একটা অতিথি গেল কোথাও, গৃহস্থ বললো যে সে আপনি আমার ঘরে ঠাকুর আছেন, ঠাকুরের প্রসাদ আছে এখানে, অন্ন ডাল তরকারি পুয়া পাকমান ইত্যাদি আছে, আপনি সেইটি গ্রহণ করবেন নাকি আপনাকে চাল ডাল ইত্যাদি দিয়ে দেবো সেইটি আপনি করে দিয়ে ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে খাবে? তিনি বললেন যে আপনার ঘরেতে ঠাকুরের প্রসাদ হয়েছে সেটি আপনাকে দেন আমি গ্রহণ করব। তখন পাকা পাকাই সুস্বাদু চতুর্বিধ ব্যঞ্জন তিনি প্রসাদ দিলেন, এই হচ্ছে ভগবানের কৃপা। আর তাহার সাধন কি? তিনি তার ঠিক বিপ্রকে শচী মা বলেন যে তুমি প্রসাদ পাবে না তুমি রান্না করে ভোগ দিবে, তিনি বললেন আমি তার্থিক ব্রাহ্মণ, আমি কারো হাতে আমি প্রসাদ পাই না, তো তুমি আমাকে যদি চাল ডাল তরকারি এসব দিয়ে দিয়ে আমনিয়া দিয়ে দিও তাহলে আমি নিজে রান্না করে ভোগ লাগাব। তাকে তিনি চাল ডাল দিয়ে দিলেন আর চুলা চাল ইত্যাদি পরিষ্কার করে দিলেন, কাঠ ইত্যাদি দিয়ে দিলেন আর বললেন যে তুমি রান্না করো। এই রান্না যে বিষয়গুলি যে দিলেন এটি ভগবানের কৃপাতে সাধনেতে রুচি আসবে, গুরু সঙ্গে সদ্গুরুর সঙ্গে ভগবান মিলিয়ে দিবেন ওটি ভগবানের কৃপা। কোন সন্ত নারদ ঋষি মতন প্রহ্লাদ পেয়ে গেলেন, এটা নিজেই পেয়ে গেলেন আকি নারদের কৃপাতে? নারদ আবার কোথাটিকে আসলেন? ভগবানের কৃপাতে। এই সাধনটাও ভগবানের কৃপা অথবা ভক্ত কৃপা। আর ওই যে সিদ্ধিতে নিত্য সিদ্ধ ভাব যে প্রকটিত হবে ওই সাধ্যটাও ভগবানের কৃপাতে। আমাদের সাধন মানে এই একটু হৃদয় নির্মল করব, অনাচার বিচার গুলি ছেড়ে দিয়ে সদাচার সম্পন্ন হব, কিন্তু এরপরে যে ভক্তি আসবে এই আমাদের সাধ্য নয়, নিত্য সিদ্ধ হওয়া আমাদের লাভ চেষ্টা করি আসবে না যতদিন না ভক্তি আমি ভগবানের কৃপা। এই জন্য এই সাধনটাও নিত্য, আবার যে তার সাধ্য যে কৃষ্ণ প্রেম কৃষ্ণ সেবা ওটা নিত্য। চৈতন্য মহাপ্রভু এইসব বলি নিত্য জিনিস এই সনাতন ধর্ম দিতে এসেছিল, তার এক দু একটি আমি একটা উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দিই। লক্ষ্মী দেবী নারায়ণের নিত্য সেবা করছে, সব সময় পৎসম বাহন করছে, কোথা থেকে তিনি নারদের মুখে শুনলেন যে কৃষ্ণ অত্যন্ত সুন্দর, তার মধ্যে চার রকমের যে মাধুরী আছে ওটা নারায়ণের মধ্যে বলেন। কি চারটি মাধুরী? রূপ মাধুরী, বেণু মাধুরী, গুণ মাধুরী আর লীলা মাধুরী। নারায়ণের মধ্যে নাই, শুনলেন যে সে কৃষ্ণ অত্যন্ত সুন্দর, নবকিশোর নটবর, তিনি গোপ বেশ বেশ বেণুকর, আর গোপীগণের সঙ্গে বৃন্দাবনেতে ব্রহ্মার এক রাত্রি পর্যন্ত কোটি কোটি বৎসর কেউ বুঝতে পারলো না, আর ওইখানে রাস, ওই রাসের মধ্যে গোপীরা কৃষ্ণের কত রকমের যে সেবা করেছেন এই যত্তা নেই, ওই হচ্ছে সনাতন ধর্মের শেষ কথা। ওই এক রাত্রিতে গোপীগণ কৃষ্ণকে কত রকমের যে সেবা করেছেন ওই সব শুনে বেদের বিচার লোভ হলো যে আমরা ওই রকম কৃষ্ণের সেবা করতে পারি। আর এই লক্ষ্মী দেবীর ইচ্ছা হলো, ভাগবতে এটা দিয়েছেন কি অশ্যাদ কশ্যানুভাব ন বেদমহে ন দেব বিদমহে। আরে গোপ এই লক্ষ্মী দেবী বলছেন কি সৌভাগ্যক্রমেতে ওই দ্বিজ পত্নী নাগ পত্নীগণ বলছে কি সৌভাগ্যের লক্ষ্মী করেছে, কার্য করেছে, যে যে পাদ পদ্মকে ব্রহ্মা শঙ্কর লক্ষ্মী পায় না, আর কৃষ্ণ জো করে তাহার মাথাতে তাহার পায়ে দিচ্ছে, অক্রুঝার অভিবন্দনা করছে বারবার, ভূমিটা গড়া গড়ি দিচ্ছে, পর্যটক মহারাজ বললেন। আর সেই পাদ পদ্ম কালিয় চায় না, আর তাকে মারতে চায়, কামড়াইতে চায়, আর কৃষ্ণ জোর করে তাহার মাথার উপরে তাহার পাদ পদ্ম রেখে যায়। ওহো লক্ষ্মী যে পাদ পদ্ম পায়, বৃন্দাবনেতে কৃষ্ণের রাসলীলাতে প্রবেশ করতে করে আর গোপী মন্ডল সেবা করবার আকাঙ্ক্ষা তার রয়েছে, আর বেদ বনেতে যে লাখ কোটি বছর তপস্যা করেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত পেলেন কি না পেলেন এটা শাস্ত্রে কোথাও লেখা নেই, অর্থাৎ পেলেন না। আর গোপীরা তার কি করে, কিরকম তার সেবা করে, যত কিং করিস বৌসা খলুকা গোবানি নিত্যম পরস্য পুরুষস্য শিখণ্ড মৌলে যস্যা কদা রসনিধে বৃষভানুজায়া তত কেল কুঞ্জ ভবনাঙ্গন মার্জনীষা। শ্রীমতী রাধিকার কিং করিগণ যত কিং করিস বহুশ, কৃষ্ণ তাহাদের পায়েতে পড়ছেন ওই কিং করিগণে। কোন কিং করিগণ? যারা শ্রীমতী রাধিকার দিন রাত সেবা করছে, আর ওরা দ্বারা যাতে দাঁড়িয়ে আছে কুঞ্জের দ্বারেতে, কৃষ্ণ এসেছেন শ্রীমতী রাধিকার সঙ্গে দেখা করতে, সেবা করতে এসেছে, আর তার কুঞ্জ দ্বারেতে তাহাকে রোকে দিল, আজকে কালো লোক ভিতরে প্রবেশ করবে না, তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও। তার কিং করিরা কৃষ্ণকে ওখান থেকে তাড়াচ্ছে, আর তিনি কাচুমাচু হয়ে প্রার্থনা করছেন তোমার পায়ে পড়ি আমরা একটু যেতে দাও। যাদের কিং করিয়ে দেয় অবস্থা, তাহলে শ্রীমতী রাধিকার মহত্ব কত দূর? সেই শ্রীমতী রাধিকার যেখানে রাধা কৃষ্ণের, রাধা শ্রীমতী কৃষ্ণের সেবা করছেন, আর কৃষ্ণ যে শ্রীমতী রাধিকার সেবা করছেন, ওই কুঞ্জিতে আমি কখন একটা ঝাড়ু একটা শিখ হব, শালাকা হব, যাতে ওইটা কাউকে ঝাড়ু দেওয়া হবে। আমার এইরকম কোনোদিন কি সৌভাগ্য হবে যে ঝাড়ু শিখ হতে পারে? এই হচ্ছে নিত্য সনাতন ধর্মের চূড়ান্ত কথা। লক্ষ্মী পায় নাই, সত্যভামা রূপিণী পায় নাই, এই সব সেবা ছিল রঘুনাথ দাস বল, এই জন্য বলছেন রঘুনাথ দাস গোস্বামী, তবেই বাসমি তবেই বাসমি ন জীবামি ত্বয়া বিনা ইতি বিজ্ঞায় রাধে তং নয় মাম। হে শ্রীমতী রাধিকা, তোমার চরণের কিং করি আমাকে করো, যাতে আমি যুগল সেবা করতে পারি। রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর, জীবনে মরণে গতি আর নাহি মো। তারপরে কান্দির কুলে খেলি কদম, কত উচ্চ আদর্শ সব এই সনাতন ধর্মে, এ হচ্ছে চূড়ান্ত শেষ কথা। এই জন্য একটি ভক্ত কোন প্রার্থনা করছে কৃষ্ণের কাছে, কি প্রার্থনা করছে? প্রার্থনা করছে শ্যাম সুন্দর শিখণ্ড শেখর স্মের হাস মুরলী মনোহর রাধিকা রসিক মাং কৃপানিধে ত্বম চরণ কীর্তন। হে শ্যাম সুন্দর, যদি তুমি আমার পরে প্রসন্ন আছো, তাহলে তোমার সেবা আমি চাই না। কার সেবা চাই? তোমার হৃদয়ের ধন, যাকে যে তোমাকে সেবা করে বশীভূত করে দিয়েছে, ওই শ্রীমতী যে প্রাণ কৃষ্ণের প্রাণ স্বরূপা, তার কিং করি আমাকে করে দাও, যাতে আমি যুগল সেবার সেবা করতে পারি। এছাড়া আর আমি কিছু চাই না। যদি হে শ্রীমতী রাধিকা এই সেবা আমাকে না দাও, তাহলে জীবন ধারণ আমার কোন দরকার। আশা ভরি অমৃত সিন্ধুময়ী কন্তঞ্চে কালো মায়াতি গমিতাতি সাম্প্রতম হি ত্বঞ্চে কৃপাময়ী বিধাস্যসি নৈব কিং মে প্রাণে ভজৈন করোর। ও শ্রীমতী রাধিকা, তুমি যদি কিং করি আমাকে না বানাও, তোমার সেবা না দাও, তাহলে আমার ব্রজে লাভ কোন দরকার নেই। এই রাধা পণ্ডিতে আমার ঠাকুর কোন প্রয়োজন নাই, এমনকি আমার কৃষ্ণেরও কোন প্রয়োজন নেই। এই হচ্ছে চরম কথা সনাতন ধর্মের কথা। গোলোক বৃন্দাবনেতে এই নিত্য সেবা রয়েছে, তার একটা ঝলক 120 বর্ষ পর্যন্ত কৃষ্ণ এই জগতে প্রকট লীলাতে ওই নিত্য সেবা প্রকট করেছে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ওই একটা কম দিতে জগৎকে এসেছে, যাতে জগৎ ধন্য হয়ে যাবে। এই হচ্ছে সনাতন ধর্মের একটা মোটামুটি একটা লাইন। অতএব এই হচ্ছে সনাতন।
এই জন্য সনাতন ধর্মে ওইটি কথা অনর্পিত চাই চিরাহত করুণে অবতীর্ণ কল সমর্পিত মুন্নত জলসং সভক্তি হরি অপূর সুন্দর দূত কদম্ব সন্দীপিত সদা হৃদয়ে কন্দরে স্বরূপ। এই হচ্ছে সনাতন ধর্মের কথা। আমাদের শুনেছি যে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র তিনি সত্যের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন, যে বিক্রি করে দিয়েছিলেন, আর বারাণসীতে একটা ডোমের কিঙ্কর হয়েছিলেন, তার স্ত্রীকে একটা ব্রাহ্মণ কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলেন, তার ছেলেটাকেও কত 2500 স্বর্ণ মুদ্রাতে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত কি হলো দেখুন তো, কৃষ্ণ সেবা কিছু করেছিলেন, নিত্য ধর্মের মধ্যে আসলেন কি, সুধা সুধি কর্মী। লোক মনে করে যে সনাতন ধর্মের উচ্চ স্থানেতে আছে, অন্য ভিলাসী তা দূর হলো না, কিসের জন্য এগুলি অন্যাভিলাষী, এটা সনাতন ধর্ম নয়। সনাতন ধর্মের একটা পাশ্ব হতে পারে, দিধিচি ছিলেন দধিচি, জানেন তো দধিচি ঋষি, আর একটা শিবি ছিলেন। শিবি কি করেছিলেন, একটা কবুতরের জন্য নিজে কেটে পায়ে কেটেছেন, হাত কেটেছেন, আর নিজেকে শেষ পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছেন। বাহ 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 বাহ, বড় একজন মহাকর্মী, একেবারে সনাতন ধর্মী। যারা বোকা লোক তাহারা মনে করবে যে সেই সনাতন ধর্ম, সনাতন ধর্মের কাছে কিন্তু জানবে এইগুলি সনাতন ধর্ম নয়। দধিচি কি করেছিলেন, হাড় নিজে দিয়েছেন, নিজের শরীরটাকে দধি আর চিনি মাখিয়ে দিয়ে আর একটা গরু দয়া চাটিয়ে যখন শুধু হাড় হলো, সেই হাড়টা ইন্দ্রকে দিয়েছিলেন, তিনি বজ্র করে বিকাশ উঠেন। এটা কৃষ্ণের সেবা কোথায়, কৃষ্ণের সেবা আছে কিছু, এতে কোন কৃষ্ণের সেবা নেই, অত এও সনাতন ধর্ম নয়, কিন্তু লোক সনাতন ধর্ম বলে চালাচ্ছে। এইরকম হয় যদি আগে আর চলি, প্রহ্লাদ মহারাজ একান্তে খুব বড় ভক্ত, কৃষ্ণ কি সেবা করেছেন, নৃসিংহদেব আসলেন তাহার পাপ সম্বাহন করলেন নাকি কি করলেন, তিনি সর্বত্র দেখছেন যে ভগবান এই ভগবান, সেবাটা কি হনুমান মতন কোন সেবা করেছেন, এই জন্য হনুমান তাহার অপেক্ষা শেষ। এই সনাতন ধর্মে একটু নিকটে আসলে এখান থেকে প্রেম আরম্ভ হলো, সেবা আরম্ভ হলো, কিন্তু হনুমান কি রামচন্দ্রের পলঙ্গে বসে তার সেবা করবেন, সীতা দেবী কি করবেন, সীতা দেবী কত সেবা করবেন, গোপীদের মধ্যে রাম বলবেন যে একই তোমাকে বনবাস দিলেন যা, কানতে কানতে তিনি চলে যাবেন, গোপীরা যাবে কি, কৃষ্ণ বলে তুমি এখানে যাও, এখান থেকে কৃষ্ণকে ওখান থেকে তাড়িয়ে দিবে, তুমি কালো লোক তুমি আর এখানে প্রবেশ করো না। এই হচ্ছে সনাতন ধর্ম, সনাতন ধর্ম এইগুলি কখনো মানে একটু তার বিপর্যয় হবে না, এই নিত্য সেবা ওখানে এই সবগুলি চলছে। লক্ষ্মী দেবী রুকমিনী সত্যভামার মধ্যে প্রেম আছে, সেবা আছে, কিন্তু